कृष्ण कृपा श्रीमती अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिवचार्य अष्टोत्तर सत्कृष्ण कृपा श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की नदिया नवदीप धाम की जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी देवी की समवेग गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे आल ग्लोरियस टू एशियन मल्टीवर्टी हरे कृष्ण आल ग्लोरियस टू एशियन मल्टीवर्टी हरे कृष्ण आल ग्लोरियस टू एशियन मल्टीवर्टी हरे कृष्ण आल ग्लोरियस आल ग्लोरियस आल ग्लोरियस श्री गुरु एंड श्री गौरंग आल ग्लोरियस श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। भगवद्गीता यथारूप अध्याय क्रमांक 11 श्लोक क्रमांक 54।
भक्त्यात्मनन्याशक्य अहम् एवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप भक्त्यात्मनन्याशक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप भक्त्यात्मनन्याशक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। शब्दार्थ भक्त्या भक्ति से तू लेकिन अनन्या सकाम कर्म तथा ज्ञान के रहित शक्य संभव अहम मैं एवं विदा इस प्रकार अर्जुन हे अर्जुन ज्ञातुम जानने द्रष्टुम देखने च तथा तत्वेना वास्तव में प्रवेष्टुम प्रवेश करने च भी परंतपा हे बलिष्ठ भुजाओं वाले। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद हे अर्जुन केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। कृपया सभी दोहराइए हे अर्जुन केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तात्पर्य, कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे इसे स्पष्टतया कहते हैं, जिससे ऐसे अनाधिकारी टीकाकार जो भगवद गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझ जाना चाहते हैं, यह जान सके कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही दो भुजाओं वाले रूप में बदल गए। ये बातें न तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती है, न दार्शनिक चिंतन द्वारा। अतः यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि न तो कोई उन्हें देख सकता है और न इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है। किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान हैं, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ, कठिन तपस्या हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मांस की दोनों एकादशी महीनों की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। जहां तक दान का संबंध है, यह बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्त रीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया यह दान संसार का सबसे बड़ा दान है। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधिपूर्वक पूजा करता है, भारत के मंदिरों में सदा कोई ना कोई मूर्ति, सामान्यतया विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है, तो यह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। नौसिखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद में हुई है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिताः अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्तिभाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन अर्थात मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ है कि यह विधि न तो बताई जा सकती है, न प्रयुक्त की जा सकती है, न ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। कृष्ण को चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य है, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है। सुदूरदर्शम शब्द का अर्थ ही है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था। इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे कह सकते कि तुम अपना विश्व रूप दिखलाओ। पिछले श्लोक में न शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए। उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह भगवद गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। पिछले श्लोक में न शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों की पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए, उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह भगवद्गीता का टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। निश्वसित कालम अथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णुर्महान सह्ययस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल आते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप है। अतः मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ जो समस्त कारणों के कारण है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप है। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम हैं, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और आदि महापुरुष हैं। जैसा कि भगवद्गीता से पुष्ट होता है, गोपाल तपनी उपनिषद में कहा गया है, निम्नलिखित कथन आया है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाया क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेदाय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना, अतः वे परम गुरु है। उसी प्रकरण में कहा गया है कृष्णो वे परम देवतम, कृष्ण भगवान है। एको वशी सर्वगह कृष्ण इंग्य, वह कृष्ण भगवान है और पूज्य है। एको पी संबहु धायो भवाति, कृष्ण एक है किंतु वे अनंत रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। गोपाल दापनी 1.21। ब्रह्म संहिता का कथन है ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान तो कृष्ण है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका कोई आदि नहीं है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि है, वे समस्त कारणों के कारण है। अन्यत्र भी कहा गया है यात्रा वतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति। भगवान एक व्यक्ति है, उसका नाम कृष्ण है और वह कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इस प्रकार भगवत गीता श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है जिसमें कृष्ण का भी नाम है, किंतु यह कहा गया है कि यह कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है अपितु साक्षात भगवान है। एते चांश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसी प्रकार भगवद्गीता में भगवान कहते हैं मत्तः परतरन्नान्यत्, मुझ भगवान कृष्ण के रूप से कोई श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया है अहम आदिर हि देवानाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। कृष्ण से भगवद्गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करता है परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवान। अब मैं भलीभांति समझ गया हूँ कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वह उनका आदि स्वरूप नहीं है। आदि स्वरूप तो कृष्ण है, हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। यह ईश्वर का आदि रूप नहीं है। विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को यह विश्व रूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा अपितु उसे भयानक लगा। कृष्ण के चीर सखा अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होंगी, वह भी सामान्य व्यक्ति न था, इसलिए वह विश्व रूप से मोहित नहीं हुआ। यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए तो दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है।
ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो इसके बाद और एक श्लोक है, उसके बाद 11वां अध्याय खत्म हो जाता है ना। तो 11वां अध्याय में भगवत गीता में भगवान की जो ऐश्वर्य वो प्रकट हुआ है। तो भगवान ये ऐश्वर्य क्यों दिखाए? भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान को जानते हैं कि भगवान जो है वो जैसे इस ब्रह्म संहिता में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो जानते हैं वो भगवान है करके, मगर जो इस संसार के लोग हैं वो भगवान के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे भगवान के भक्त होते हैं, प्रभुपाद जी लेक्चर में बता रहे थे, कुछ लोग सोचते हैं कि जो भगवान के भक्त होते वो सब चालाक नहीं होते, और हम बहुत चालाक है बाहर के लोग सोचते हैं, ये लोग सब उतने हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जो ऐसा जो सोचता है वो भी बड़ा मूर्ख है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है कि मैं बहुत बड़ा चालाक हूं और जो भगवान के भक्त है वो सब मूर्ख है, ये जो सोचता है ये भी एक मूर्खता है, बोल रहे थे प्रभुपाद। तो भगवान इसीलिए ये ऐश्वर्य दिखाते हैं कि ये जो मूर्ख लोग हैं उनको कुछ ज्ञान मिले। एक्चुअली ये संसार में जितने भी जीव है अज्ञान में है, अज्ञान बोले तो मूर्खता, भगवान को भूल के अपने खुद की सुख के लिए कार्य करना ये अज्ञानता है, वो यही सबसे बड़ा मूर्खता है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में बहुत गाली देते हैं, क्या बोलते हैं, नमामि दुष्कृतिनाम मूढ़ा, मूर्ख व्यक्ति मेरे पास में नहीं आता है। एक्चुअली भगवान के द्वार में कोई आता है, भगवान को दर्शन करता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, भगवान की चरणामृत लेता है, तो वो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है। मुंबई के अंदर बहुत करोड़ों लोग है मगर भगवान की भक्ति करने के लिए कोई नहीं आता है। आते है समुन्द्र खारा पानी में कचरे में घूम के जाते हैं मगर टेम्पल में नहीं आते हैं, ऐसे भी लोग हैं बहुत। तो इसीलिए भगवान ये रूप दिखाए कि लोग समझे कि उनका कर्तव्य क्या है, कि वो भगवान के बारे में जाने। वो कुछ लोग भी ऐसा भी सोचते हैं, कुछ हम सुने हैं ऐसे, कुछ लोग ऐसे हैं बोलते हैं कृष्ण हमारे परिवार में जन्म लिए थे, बोले तो जैसे उनको लगता है कि हमारा वंशज है। चलो ऐसा भी रिलेटिव समझ रहे वो अच्छी बात है, मगर भगवान भगवान है, भगवान जो कार्य करते हैं वो एक साधारण जीव नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही भगवान जब वृंदावन में प्रकट हुए, सॉरी मथुरा में प्रकट हुए और वृंदावन ने गोकुल में लीलाएं किए, उसी ऐसे तो भगवान बहुत अनर लीलाएं किए, मगर एक बहुत सुंदर लीला जो कि दामोदर लीला कहा जाता है। अभी सभी भक्तगण भगवान दामोदर को दीप दान कर रहे थे, दीप दर्शन दीप दिखा रहे थे। तो ये लीला के बारे में हम कुछ सुनेंगे, क्योंकि जो भगवान के जीव लीला है वो हमारे हृदय को शुद्ध करने वाला है। भगवान की कथा श्रीनथा स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय ही अभद्राणी विदुनथी स्वैश्वता। जो भगवान की कथा सुनने से हमारे हृदय के अंदर जो कलमस है वो नष्ट होता है, इसीलिए हम भगवान की कथा सुनते हैं। तो जब भगवान वृंदावन में रह रहे थे, लीलाएं कर रहे थे, तब वृंदावन के जो ब्रजवासी थे वो हमेशा माता यशोदा के पास आते थे और आकर बताते थे कि आपके जो कान्हा है कृष्ण है ये हमेशा आकर हमारा घर में माखन चुराता है। भगवान का एक नाम है माखन चोर, तो माखन चुराता है। वो बोले कि अभी छोटा सा बच्चा आकर अगर माखन चोरी करेगा तो कितना माखन खाए, थोड़ा सा खाएगा। तो ये चीज को वो बोले कि वो चुराता है उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको ये प्रॉब्लम है वो जितना चुराता है उससे 100 गुना नष्ट कर लेता है, जितना वो खाता है उससे ज्यादा फेंक देता है। और फेंकता तो फेंकता है, चलो फेंका खाया वो भी बात नहीं, मगर हमारे सामान जो घर में जो वस्तुएं है उसको भी नष्ट करता है। तो हमेशा तो माता यशोदा बोले ठीक है, हमारा घर कोई हम गरीब नहीं है, हमारे घर में इतने सारे गाय है और इतने सारे सेवक है, हमारे घर में अभी कोई बोलेगा, अभी कौन सा वो जियो कंपनी का मालिक कौन है, धीरूभाई अंबानी का कोई उनका लड़का आकर वो बोलेगा कहां पे कुछ चोरी कर रहा है करके, ऐसा कोई सुनेगा, कोई बोलेगा ही, कोई विश्वास ही नहीं करेगा, करेगा? अरे वो बोलेगा अगर कोई मार्केट में गया है कुछ खरीद रहा है वो भी कोई विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने सारे कुछ असुविधाएं नहीं है, सब प्रकार के फैसिलिटी है। उसी प्रकार नंद महाराज जी के भवन में सब प्रकार के सुविधाएं थी और उनका कोई भी असुविधा नहीं था। अगर माता यशोदा को आकर ये लोग जो कंप्लेन कर रहे थे कि आपके बेटा आकर ये कर रहे वो कर रहे, माता यशोदा कभी विश्वास नहीं करती थी। बाद में माता यशोदा सोचने लगी कि शायद अभी क्या है, बच्चे नटखट होते हैं, शायद कभी हमारा कृष्णा चला गया रहेगा, ऐसा सोचे। तो माता यशोदा एक बार बोले कि एक काम करो, उनके हमारे जो कृष्णा चोरी करता है आप बोल रहे हो तो उनको पकड़ के लेके आओ। वो टाइम पे कैमरा नहीं था, नहीं तो वो बोल सकते थे हम रिकॉर्डिंग किए दिखा देंगे वीडियो। तो माता यशोदा बोले कि आप उनको पकड़ के लेके आओ कृष्णा को, तभी हम एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा कृष्णा चोरी करता है करके। तो सब गोपी लोग प्लान किए कि कुछ भी हो कृष्णा को पकड़ेंगे। एक्चुअली ऐसे वेदांत शास्त्र सूत्र और उपनिषद इस सब में बताया गया है कि भगवान को जानने के लिए करोड़ों करोड़ों तपस्या करने के बाद व्यक्ति नहीं जान पाते हैं, करोड़ों करोड़ वर्ष तक तपस्या करने में। मगर देखो जो ऐसे एक श्लोक आता है, वो श्लोक मेरे को याद नहीं है, उसमें ऐसा बताया गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि बहुत वेद अध्ययन करने के बाद ये ऐसे है, इनके बारे में ऐसा बताया गया भगवान के बारे में। कुछ लोग कहते हैं, कुछ शास्त्र कहता है भगवान ऐसे है वैसे है, मगर माता यशोदा वो कहते हैं ये मेरा बस छोटा सा लाला कृष्ण है मेरा, ये जो सारे संसार के लोग ज्ञान के द्वारा अपने मन बुद्धि के द्वारा जानना चाहते हैं वही माता यशोदा के गोद में खेलते हैं। तो वैसे भगवान क्यों लीला करते हैं, क्योंकि भगवान को अपने भक्तों को प्रिय है। भगवान खुद बताते हैं भक्त अमाय बांधिया छे प्रेमेर रजुरे जहां नेत्र पड़े तहां सुरय हमारे। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भगवान को वो हृदय के अंदर बांध के रखते हैं और वो जहां देखते हैं वो भगवान को ही दर्शन करते हैं। ऐसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया, स्थावर देखे जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र स्फुरित हुए तार इष्ट देव श्रुति। कृपया शांति बनाए रखे, आवाज मत करिए, अभी कुछ ही समय के लिए मंदिर बंद होने वाला है और 8:30 के बाद पट खुलेगा तो आप बैठ के प्रवचन सुन सकते हैं, बाद में दर्शन करके जा सकते हैं। तो वो भगवान के जो भक्त होते हैं वो प्रत्येक स्थान हर कोई स्थान पे भगवान को देखते हैं। एक बार महाराज जी बता रहे थे कि एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे कार में, एक जगह में जी में ऐसा कुछ लिखा था तो प्रभुपाद जी उसको देखे गोपाल बोले, उधर क्या लिखा था उसका एक वर्ड को देख के वो गोपाल बोलने लगे। जो भगवान के भक्त होते हैं वो हर कोई वस्तु को भगवान के नाम रूप लीला में दर्शन करते हैं, मगर जो विषय भोगी लोग लो होते हैं वो हर कोई वस्तु को केवल अपना इंद्रिय तृप्ति के समझेंगे। जैसे कोई स्थान पे हम गए, जैसे कोई व्यक्ति, आप समझ लीजिए एक युवा व्यक्ति जा रहा है, वहां पे बहुत सारे गुलाब का फूल है, वो सोचेगा कि ये मैं लेके मैं अपने प्रेमी को, अपने संबंधियों को दूंगा। मगर भगवान का एक भक्त जा रहा है, वो देखेगा, वो सोचेगा ये लेके मैं हमारे राजबिहारी जी को देंगे। तो उनका प्रेम है राजबिहारी जी के प्रति, कृष्ण के प्रति, वो उनका जो प्रेम है वो भगवान के प्रति है। और ये जो भौतिक व्यक्ति है उनका प्रेम संसार के प्रति है। और सांसारिक, आप सांसारिक सुख के लिए किसी को अगर कुछ भी दो वो आपको बाद में अंत में दुख ही मिलने वाला है। भगवान को दिया हुआ वस्तु आपको प्रेम प्रदान करता है, संसार को दिया हुआ वस्तु केवल दुख प्रदान करता है। तो उसी प्रकार भगवान के जो प्रेमी भक्त थे ब्रजवासी, वो लोग ये सोचते थे कि एक बार मैं परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जी के लेक्चर में सुन रहा था कि जब गोपियां ऐसा कंप्लेन करते थे कि कृष्ण हमारे घर पे आकर चोरी करते हैं करके, तब बाद में वो बोलने लगे, जब कृष्ण भगवान गए नहीं तो वो आकर बोलने लगे, कृष्ण कैसा है आजकल, नहीं आता है हमारे घर पे, उसका तबीयत ठीक है ना। तो भगवान के ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं, प्रेमी भक्त केवल कृष्ण को ही चाहते हैं, उनका मन में और कोई इच्छा नहीं होता है। इसीलिए महाप्रभु बताते हैं कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता अम्बा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनी सरे। जो प्रेमी भक्त होते हैं उनका एक ही कामना रहता है कि मेरा जन्म, हर जन्म में केवल मैं कृष्ण की सेवा करूं। तो ऐसे भगवान का, इसीलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि अगर ब्रह्मा जी का एक दिन भी मेरे को मिल जाए तो मैं ये जो ब्रजवासी है, हे गोपी गोपीगण है, इनका मैं ऋण नहीं चुका सकता हूं। क्यों? क्योंकि भगवान को वो इतने प्रेम करते हैं। जो कोई व्यक्ति भगवान को प्रेम करता है भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। हम संसार को प्रेम करते हैं, संसार लोग हमको ऋण में डाल देते हैं, हम कर्जे में डूब जाते हैं। मगर हम अगर भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान वो अपने, भगवान कहते हैं कि मैं कर्जे में डूब जाता हूं, इनका कर्जा कब चुकाऊं। श्री श्री राधारास बिहारी जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री श्री गौ निताय की, श्रील प्रभुपाद की। तो अभी कुछ ही समय के लिए पट बंद हुआ है, 8:30 बजे पट खुलेगा, आप कुछ समय बैठ के कथा सुन सकते हैं, नहीं तो कुछ समय के बाद आ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान ऋणी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान देखते हैं कि भगवान, जब भगवान के कोई भक्ति में आता है, भगवान पहले उनको बहुत कुछ देते हैं। ऐसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया, माया के पीछे रखी कृष्ण पाने चाहे। जो भगवान के भक्त होते हैं माया को साइड में रखते हैं, साइड में ऐसा रख के केवल वो कहते हैं हमको केवल कृष्ण चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो संसार की माया के पीछे संसार लोग पागल है, वैसे माया को मेरे जो भक्त होते हैं उसको तुच्छ करके लात मार देते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है। जो प्रेमी भक्त, हम सुनेंगे जो माधवेंद्र पुरी थे, ऐसा कहा जाता है जो तीन चीज के पीछे हर कोई ये संसार पागल है, कनक कामिनी और प्रतिष्ठा। संसार स्त्री के पीछे पागल है, स्त्री पुरुष के पीछे पागल है, कामिनी, बाद में कनक, कनक धन के पीछे सब पागल है, कनक कामिनी प्रतिष्ठा। कोई व्यक्ति को धन नहीं चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए, पुरुष नहीं चाहिए, मगर उसको सम्मान तो चाहिए, सम्मान को कोई नहीं छोड़ सकता है। ऐसा कहा जाता है प्रतिष्ठा बागिनी, कोई शेर के मुख से बच सकता है, जो शेरनी होता है उससे, उसके उसके मुख से कोई नहीं बच सकता है। वो जो प्रेस्टीज है, नाम पूजा प्रतिष्ठा, नेम फेम, वो बागिनी है। और हमारा आचार्य वर्ग कहते हैं वैष्णवे प्रतिष्ठा सुकोरी रविष्ठा, ऐसे गंदा वस्तु है। एक महाराज जी बताते हैं, परम पूज्य गौरविंद महाराज, के जो महाराज कहते हैं कि विष्ठा जो है मल, ऐसे घृण्य वस्तु है, उसको कोई टच नहीं करना चाहता है। अगर गलती से टच हो गया तो हमारे भक्तजन स्नान करते हैं, बाहर के लोग के बारे में हमको जानकारी नहीं है। वो ऐसा गंदगी वस्तु है, मगर जो प्रतिष्ठा रूपी विष्ठा है, मल है, वो मल को हर कोई अपना शरीर में लगाना चाहता है, ऐसा गंदगी है। तो हमारे जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, वो जानते हैं कि ये प्रतिष्ठा विष्ठा है, वो दूर रहते हैं। छाड़ी अच्छे जी सही तो वैष्णव, अभी हम वैष्णव बनने की अभ्यास कर रहे हैं, जब हम ये तीनों चीज को छोड़ देंगे हम वैष्णव बन जाएंगे। मगर हमको प्रयास करना चाहिए कि इस तीनों चीज को छोड़ने के लिए। इसीलिए महाप्रभु बताते हैं कि ये जो त्रिनादपि सुनिचे न तररूपि सहिष्णु, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं इसको हमको गले में माला पहन के पहनना चाहिए, क्योंकि जो गौड़ीय सिद्धांत है उनका, हमारा यही एक मूल है। जो गौड़ीय वैष्णव होते हैं वो दैन्यता है, उनके पास दैन्य रहता है। जैसे हम सड़ गोस्वामी के बारे में सुनते हैं, तत्वातुर्ण मम शेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत, छोड़ दिए पूरा, मल के समान त्याग कर दिए। हमारे एक महाराज जी बता रहे, धलधर स्वामी महाराज, वो मल के जैसा त्याग नहीं किए, वो बोले कि उल्टी के जैसा त्याग किए। कोई अगर मल त्याग करता है तो भी वो देखता है कि ये मल है करके, मगर आप कभी उल्टी किए हो उसको देखो, आपको वो उल्टा और उल्टी आएगा, है ना। आप कभी उल्टी गलती से कर लिए उसको देखो तो आपको और उल्टी आएगा। तो हमारे जो आचार्य वर्ग है वो उल्टी के समान त्याग दिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान को चाहते हैं। भगवान के जो भक्त होते केवल कृष्ण चाहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही ब्रजवासी थे, ब्रजवासी को कुछ नहीं चाहिए था, उनको एक ही चीज चाहिए, कृष्ण। हम कैसे भी करके कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन मिल जाए, आप भगवत गीता में पढ़ेंगे ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है, हमारा ये जो कैलकुलेटर है उसमें भी हम हिसाब नहीं कर सकते। सहर्ष युग पर्यंत अहरम ब्रह्मण विदु, जो ऐसा चतुर्युग, ऐसा 100 युग के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन जाता है, उसी प्रकार और एक रात। तो ऐसा, क्योंकि भगवान हर कोई वस्तु दे सकते हैं, मगर उनका जो प्रेम प्राप्त करने के लिए इतना सरल नहीं है। उसी प्रकार माता यशोदा को ऐसे कंप्लेन आता था, माता यशोदा सोचने लगे कि हो ना हो ये तो कुछ नटखट कर रहा है, क्योंकि है ये, क्योंकि जो काले होते हैं वो थोड़े नटखट होते ही है, मगर भगवान काले नहीं है, भगवान श्याम सुंदर है, भगवान बहुत सुंदर है। एक बार प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, शायद वो अफ्रीका साइड में कहां थे क्लास दे रहे थे, अफ्रीका नैरोबी, हाँ प्रोजी नैरोबी में क्लास दे रहे थे। तो वो बोले भगवान कृष्ण काले हैं, तो नैरोबी के जो लोग रहते वो केनिया में आता है, किसमें आता है, केनिया ना, केनिया में आता है। तो केनिया साइड के जो लोग होते थोड़े काले होते हैं, तो वो सोचने लगे कृष्ण हमारे जैसे काले होएंगे। बाद में प्रभुपाद जी बोले नहीं, आप सोचो मत कि आपके जैसे कृष्ण काले है, श्यामं त्रिभंग ललितम, भगवान त्रिभंग ललित है, भगवान इतने सुंदर है, हमारा नजर दृष्टि जो है गंदे वस्तु के प्रति जाता है। कभी अगर भगवान के चरण कमल के प्रति जाए, भगवान का चरण कमल को अच्छी तरह से हम दर्शन करें, तो सांसारिक वस्तु तुच्छ लगेगा, मगर हमारा भौतिक आसक्ति बहुत प्रबल है, इसीलिए कृष्ण हमको अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसी प्रकार, मगर ब्रजवासी जो थे उनका कृष्ण प्राण थे, उनका भोजन, उनका जो जीवन, खाना सोना, जो कोई कार्य उनके लिए केवल कृष्ण इंपोर्टेंट थे। अगर कृष्ण को वो देख नहीं पा रहे हैं तो वो इवन गोपिया जो है ब्रज के गोपिया, वो ब्रह्मा जी को गाली देते हैं, कोटि नेत्र नहीं देलो सबे देलो दुई तही ते विचित्र कृष्ण की देखी भी मुही। वो कहते हैं कि करोड़ों आंख देना चाहिए मेरे को, मगर बस ये ब्रह्मा मूर्ख ब्रह्मा कहते वो, मगर दो ही आंख दे दिया। चलो दो आंख दिया दो भी ठीक है, मगर ये आंख के ऊपर पलक क्यों दिया? एक पलक हम जो गिरता है ना उतने भी वो बिरह सह नहीं पाते। देखो आप सोच लो कि भगवान के जो ब्रजवासी थे उनका स्थिति क्या था, वो केवल कृष्ण को देखना चाहते हैं, आग के पर्दा ऐसा गिरने से उतना टाइम वेट नहीं करते थे वो। तो ऐसे ही वो भगवान के प्रति इतने प्रेम था उनका, श्रद्धा था, तो वो जब आते नहीं थे कृष्णा, तो आकर माता यशोदा को पूछने लगे कि कृष्ण का तबीयत ठीक है, क्यों वो आजकल आता नहीं है, जब आता है आकर अब कंप्लेन करते हैं। तो माता यशोदा सोचने लगे शायद उनको अच्छा माखन वगैरह नहीं मिल पा रहा है मेरे घर से। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है जो घर का जो सब्जी है ना उतना टेस्टी नहीं रहता है, बाजू वाला घर का जो सब्जी रहता है बहुत टेस्टी रहता है, ऐसे लोग कहते हैं। तो भगवान भी सोचने लगे घर का क्या, घर का चीज खाएंगे, थोड़ा बाहर का भी खाया जाए, ब्रजवासी इतने बनाते हुए हमेशा सोचते रहते हैं कृष्णा भी क्या करता रहेगा क्या नहीं, ऐसे सोच सोच के बनाते हैं। एक्चुअली भगवान हम जब कुछ बनाते हैं हम सांसारिक सोचते हैं, वो क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है, ये सब सोचने के सोच के बनाते हैं, वो सब्जी का पूरा सत्यानाश होता है और कुछ टेस्टी भी बन गया तो भी वो पेट के लिए खराब होता है। मगर हम अगर कुछ बना रहे हैं तभी भी हमको भगवान के बारे में सोचना चाहिए और हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए कृष्ण के लिए हम बना रहे हैं। 100% आपका वो जो आप वस्तुएं बना रहे हैं, जैसे जो कोई सब्जियां दाल राइस कुछ भी बना रहे वो आपका बहुत स्वादिष्टमय बनेगा अगर आपको भगवान को स्मरण करके बना रहे। तो ब्रजवासी जो गोपिया थे वो ऐसे ही बना रहे थे। तो माता यशोदा सोचने लगे कि अगर बाहर जाके खा रहा है तो हम कुछ नया उपाय करता हूं मैं कुछ स्पेशल बनाता हूं। तो माता यशोदा ऐसा सोच के बहुत ही वो ऐसे कहा जाता है कि वो बहुत सारे जो स्पेशल गाय थे उनके उनके दूध दोहे, वो दूध एक गाय को पिलाए, उनके बाद वो गाय का दूध दो के वो तैयारी करने लगे। तो दूध को गर्म कर रहे थे। माता यशोदा जब दूध की वो कृष्ण की सेवा में लगे थे मक्खन बनाने के लिए, तभी भगवान कृष्ण सोए थे। जब कोई भगवान का सेवा में लग जाता है और प्रेममय सेवा में लगता है तो भगवान उसको भगवान कभी अपने सो नहीं पाते हैं, भगवान तुरंत जग जाते हैं। तो माता यशोदा इतने प्रेम से बना रही थी तो इसीलिए भगवान कृष्ण उठने लगे और उठ के देखने लगे कि अभी बच्चे लोग का यही समस्या रहता है कि उठते ही उनको मम्मी चाहिए माँ चाहिए, अगर उनके पास में माँ नहीं है नहीं तो आ करेंगे चिल्लाएंगे रोने लगेंगे। ऐसा चाणक्य पंडित बताते हैं, और बच्चे और स्त्रियों का जो अस्त्र है वो डरा सकते हैं वो एक ही चीज में, रो के। स्त्री या और बच्चे केवल रो के सबको डरा सकते हैं। कितना भी कोई बड़ा व्यक्ति हो अगर स्त्री रोएगा तो अपने वो पति या बच्चे जो कोई हो वो अपने पूरा पत्थर रहेगा तो भी पिघल जाएगा, बच्चा भी रोएगा तो व्यक्ति पिघल जाता है। तो जब ये रोने लगे भगवान, माता यशोदा तो इतने सेवा में बिजी थे, माता यशोदा उनको सिग्नल दे दिए कृष्णा मैं यहां पे हूं, तो आने लगे कृष्णा आकर। अभी बच्चों का यही तो स्वभाव रहता है कि माता का स्तनपान करते हैं तो दूध पीने लगे। जब दूध पीने लगे तो ऐसे दूध पी रहे थे तो वो जो वहां पे चूल्हा में गर्म हो रहा था दूध, वो सोचने लगा अरे यार मेरे अगर भगवान कृष्ण पी जाएंगे दूध माता यशोदा के स्तन से तो मेरा लाइफ कोई काम का नहीं है, क्योंकि मैं कृष्ण का सेवा में नहीं लग पाऊंगा। तो वो सोचने लगा, वो सुसाइड करने के लिए जा रहा था, ऐसा हमारे राधा गोविंद महाराज बहुत सुंदर भाव में बता रहे थे महाराज के, वो दूत सोचने लगा कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। लोग पहले, आजकल सुसाइड के लिए तो बहुत कुछ पॉइंट रह गया है, कैसे कैसे बहुत सारे अलग अलग उपाय में कर लेते हैं, मगर पहले का सुसाइड के लिए कुएं में कूदना पड़ता था या आग में कूदना पड़ता था। तो वो दूत, अभी दूत तो तप रहा था, यहाँ कृष्ण की सेवा में नहीं लगेगा करके वो आग के कूद के जान देने के लिए तैयार था। मगर जो भगवान के भक्त होते हैं किसी को मरने नहीं देते है। ऐसा ही हम सुने थे एक बार, एक भक्त, एक बाहर के व्यक्ति था, वो आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, वो रस्सी लटका के फांसी देने के लिए जा रहा था। हमारे एक कोई इस्कॉन के भक्त गए, उनका दरवाजा खटखटाए, ऐसे ठक ठक किए। जब ठक ठक किए दरवाजा, तो सोचने लगा हाँ ऐसे ही कोई कर रहा रहेगा, वो तैयारी में था। बाद में फिर से ठक ठक आए, तो वो सोचने लगा कौन है देख लेता हूं। जब आया तो हमारे यहाँ पे भक्त ऐसा भगवद गीता लेके खड़े थे, बोले कि आप कहाँ से आए हो? नहीं, हम पुस्तक दिखाने के लिए आए, पुस्तक बेचने के लिए आए हैं, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर पुस्तक है। वो बोला कि हमको नहीं चाहिए। वो अभी सोचने लगा कि जाने दो, अभी मर रहा हूं तो मरना भी तो है, चलो ये साधु का भी खुश कर लेता हूं, इसको कुछ पैसा देके वो बुक्स ले लिया। वो बुक्स लिया, रखा, तो उसका मन में क्या विचार आया, थोड़ा पढ़ने लगा। तो पढ़ा, जब उसका मन में जो आत्महत्या करने का, सुसाइड करने का विचार था वो हट गया, और कुछ दिन के बाद वो भगवान की भक्त बन गया, इस्कॉन में आने लगा, माला जप करने लगा। तो देखो, भगवान के भक्त होते हैं, जो संसार में कोई जीव आत्महत्या करना चाहते तो भी उसको बचा सकते हैं, उनके पास ऐसा उपाय है। और वो व्यक्ति वो खुद बता रहा था कि मैं मरने वाला था, मगर ऐसे ही हमको एक इस्कॉन के भक्त मिल गए, जो कि हमको पुस्तक दे दिए, उनका पुस्तक पढ़ के मेरा जीवन बदल गया। इसीलिए आज ही सुबह महाराज, कल सुबह महाराज बता रहे थे कि हमको कैसे प्रचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रंथ है एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तन कर सकता है। आज के डेट में आप लोग देख रहे हैं इस्कॉन में बहुत सारे विदेशी भक्त है, जो कि विदेश प्रांत से है, वो लोग आकर ये ग्रंथ पढ़ के उनका जीवन परिवर्तन हुआ। तो उसी प्रकार दूत जब आत्महत्या करने के लिए रेडी हो रहा था, तब माता यशोदा उनको उतार दिए, उनको रख दिए। तो जब ऐसा गए, माता यशोदा स्तनपान करा रहे थे भगवान कृष्ण को, जब कृष्ण को, कृष्ण सोचने लगे अभी आपके बच्चा को आप छोड़ के कहां पे कोई काम करने के लिए जाओगे, बच्चे लोग इतना गुस्सा होते, आजकल मम्मी मेरा केयर नहीं करती है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो माता यशोदा ऐसा जब छोड़ के गए, जो वो मक्खन निकाल रहे थे, भगवान कृष्ण एक पत्थर, छोटा सा पत्थर उठाए, मारे मटका को। एक्चुअली भगवान का फोड़ने का हैबिट था, पहले से गोपियों का घर में, ब्रजवासियों का घर में मटका फोड़ने में एक्सपर्ट थे। एक्चुअली ये बात बोलना नहीं चाहिए, हम जब छोटा था हम भी ऐसा पत्थर मार के बल्ब फोड़ते थे। हमारे हम गांव में रहते थे, तो गांव में जब स्नान करने के लिए जाते थे, जो दुकान में लगा हुआ बल्ब रहता था ना, उसको पत्थर मार के हम रोज फोड़ते थे। तो बचपन का ये कुछ आनंद ही अलग रहता है। तो भगवान कृष्ण मारे और फोड़ दिए, जब फोड़ दिए ना, फोड़ दिए और चुपचाप चले गए। तब देखने लगे माता यशोदा कि अरे कृष्ण ऐसा नटखट करता है, ऐसे में इतने सारे उसके नाम पे कंप्लेन बुक्स पूरा ऐसा भरा हुआ था, इतना मोटा से उससे भी ज्यादा मोटा कंप्लेन बुक्स था, और भी ये नखरा कर रहा है, एक काम करता हूं, इसको कुछ दंड देना पड़ेगा। तब माता यशोदा उनको पकड़ने के लिए भागे। जो पकड़ने के लिए भागे, वो भगवान को कौन पकड़ सकता है? सारा संसार, जो ऐसा कहा जाता है, जो योगी लोग हैं वो लोग अपने मन से भगवान को पकड़ना चाहते हैं, नहीं पकड़ सकते। आप इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो जो भगवान के उन्नत भक्त नहीं है, उनको बोलो कि 5 मिनट केवल भगवान के बारे में सोचे, नहीं सोच सकता है। जो व्यक्ति 5 मिनट भगवान के लिए नहीं सोच सकता है, वो कैसे वो भगवान को प्रेम करेगा? तो माता यशोदा का ऐसा प्रेम था, कृष्ण के अलावा उनका मन में और कोई विचार नहीं था, इसीलिए माता यशोदा उनको पकड़ने के लिए प्रयास किए। जब पकड़ में आ गए, देखो ऐसा भगवान भगवद गीता में बताते हैं, मद भया बात ही बातम, मेरे से हर कोई भयभीत रहता है। इंद्र वर्षा करते हैं, सूर्य तपते हैं, हवा चलता है मेरे इच्छा से। तो ऐसे भगवान को जब माता यशोदा पकड़ने लगे, भगवान कृष्ण कांपने लगे, ऐसा पूरा ऐसा कांपने लगे। जब माता के हाथ में डंडा देखे, कोई भी बच्चा कितना भी हो, अभी आजकल शहरों के लोग को तो नहीं मालूम, हम जो गांव में पाले बड़े, हम जो गांव में पाले बड़े उनको मालूम रहेगा। पहले माता ऐसे में एक फोटो देखा था, माता पीठ के पीछे डंडा रखते हैं और बच्चा को बोलते हैं इधर आ, मैं तुमको नहीं मारूंगा, मगर पीछे डंडा रेडी रहता है। बच्चे लोग डंडे को बहुत डरते हैं। तो भगवान कृष्ण देखने लगे कि माता यशोदा गुस्से में है, हाथ में डंडा भी है, अगर अभी आया मेरे को तो पिटाई होएगा। तो इतना ही कांपने लगे, भगवान रिक्वेस्ट के खाली ये डंडा को नीचे गिरा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो माता यशोदा भी सोचने लगे, चलो अभी पकड़ तो लिया हूं, अभी उसको डंडा को रख दिए। तब भगवान को बांधने के लिए माता प्रयास किए। देखो इस संसार में हम ऐसा बताया जाता है, भगवान ये सारे जीव को बांध के रखे हैं सतगुण और रजगुण और तमोगुण में, मगर जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं वो उनको बांध देते हैं। उसी प्रकार माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को बांधे और माता यशोदा के बंधन में आ गए, क्योंकि माता यशोदा का प्रेम था। हम भी अगर भगवान को प्रेम करेंगे तो हमारा हृदय के अंदर जो ये जो सांसारिक बंधन में हम फंसे हैं, ये बंधन से मुक्त होकर भगवान के पास जा सकते हैं। इसीलिए हमको भगवान के प्रेम करना चाहिए और भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान के मंदिर में आना चाहिए। और हमारे घर में अगर भगवद गीता नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, तो हमारे घर में ग्रंथ लेके जाइए और भगवान के बारे में सुनिए, जानिए, अपना जीवन को सार्थक संपूर्ण बनाइए। हरे कृष्णा, सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।
वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च।